प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, जीवित और सच्चे परमेश्वर पिता के नाम में आपको हमारा हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप? हमें आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। स्वाइए आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं, किंतु इससे पूर्व के कार्यक्रम को आरंभ करें अपने मनों की तैयारी के लिए और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे। हम प्रार्थना करें। हे अति दयालु, कृपालु और प्रेमी पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी महान अनुकंपा से हमें जीवन दिया और ये सुंदर क्षण दिए कि हम आपके जीवित और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है किस वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि दें और पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें। हमारे मध्य में उत्पन्न होने वाली समस्त बाधाओं को प्रभु आप दूर करें। यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी परेशानी में है, निराशा में है, किसी संकट में है, क्लेश में है, प्रभु आप उसकी रक्षा व सहायता करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हाँ तो मित्र, आइए अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम पुराने नियम से इतिहास की दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 6 से 8 अध्यायों को देखेंगे। छठवें अध्याय में हमारे सामने सुलेमान राजा का इसराइल प्रजा के नाम संदेश तथा उसकी समर्पण की प्रार्थना है। सो आइए देखें। दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय 1 से 6 पद, यहां इस प्रकार से वर्णन है। तब सुलेमान ने कहा, यहोवा ने कहा है कि मैं घने बादल में निवास करूंगा, परंतु मैंने तेरे लिए एक स्थान वरन एक ऐसा विशाल भवन बनाया है जिसमें तू युगानुयुग निवास करे। तब राजा ने इसराइल की संपूर्ण मंडली की ओर घूमकर उसको आशीर्वाद दिया। उस समय इसराइल की संपूर्ण मंडली खड़ी रही और उसने कहा, धन है इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को जो वचन दिया था उसे ये कहकर अपने हाथ से पूरा किया। जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने इसराइल के किसी गोत्र का कोई नगर नहीं चुना कि वहां मेरे नाम के लिए भवन बने, और ना ही मैंने किसी मनुष्य को चुना कि वह मेरी प्रजा इसराइल पर प्रधान हो, परंतु मैंने यरूशलेम को चुना है कि वहां मेरा नाम रहे, और दाऊद को चुना है कि वह मेरी प्रजा इसराइल पर प्रधान हो। मित्रवर, यहां पर हमने देखा कि परमेश्वर ने अपनी सर्वश्रेष्ठ इच्छा में यरूशलेम को चुना। परमेश्वर पिता ने यरूशलेम को पृथ्वी का केंद्र तथा उसकी राजधानी होने के लिए चुना। मित्रवर, हमारी पसंद बहुधा परमेश्वर की पसंद के विपरीत होती है। आप यरूशलेम को पसंद नहीं करेंगे, आप उसे नहीं चुनेंगे, आप सामरिया को चुनेंगे, क्योंकि स्थिति और वातावरण के दृष्टिकोण से यह राजधानी होने के लिए आदर्श स्थान है। परंतु परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना। परमेश्वर की दृष्टि में यरूशलेम आदर्श स्थान है। परमेश्वर कहता है, मैंने यरूशलेम को चुना, और यह परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ इच्छा है। प्रिय मित्र, आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर की एक इच्छा है। आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा सम्मिलित है। आप कहां रहें, किस नगर व देश में रहें, कैसे घर में रहें, प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा सम्मिलित है, और परमेश्वर की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है। तब अग्रिम पदों में हम पढ़ते हैं, सुलेमान कहते हैं, मेरे पिता दाऊद की ये इच्छा तो थी कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, ये जो तेरी इच्छा है कि तू मेरे नाम का भवन बनाए, ये इच्छा भली तो है, फिर भी तू इस भवन को ना बनाएगा, परंतु तेरा निज पुत्र ही मेरे नाम का भवन बनाएगा। अब जो वचन यहोवा ने कहा उसे उसने पूरा भी किया, क्योंकि मैं अपने पिता दाऊद का स्थान पाकर यहोवा के वचन के अनुसार इसराइल की गद्दी पर विराजमान हूं, और मैंने इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से इस भवन को बनाया है, और इसमें मैंने उस संदूक को रखा है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने इसराइलियों से बांधी थी। मित्र, परमेश्वर यरूशलेम को चुनता है। परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना, उसने दाऊद को चुना, और परमेश्वर ही ने सुलेमान को चुना कि परमेश्वर का भवन बनाए। दूसरे शब्दों में चुनाव परमेश्वर का है, और यहां यह देखना अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ही ने सारी बातों को चुना है। यरूशलेम का चुनाव परमेश्वर का है, दाऊद का चुनाव परमेश्वर का है, और सुलेमान का चुनाव भी परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने उसको चुना कि वह परमेश्वर का भवन बनाए। और अब हम समर्पण की एक सुंदर प्रार्थना पर दृष्टि डालने जा रहे हैं। सो आइए मेरे साथ दृष्टि डालिए। 12वें पद से देखें। तब उसने इसराइल की समस्त मंडली की उपस्थिति में यहोवा की वेदी के सामने खड़े होकर अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची कांसे की एक चौकी बनवाकर आंगन के मध्य रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने इसराइल की समस्त मंडली के समक्ष घुटने टेके और स्वर्ग की ओर हाथ फैलाकर कहा, हे यहोवा इसराइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तू अपने उन दासों के प्रति जो संपूर्ण मन से तेरे सम्मुख चलते हैं अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को जो वचन दिया था उसे पूरा किया है, जैसे तूने अपने मुख से कहा था निश्चय वैसे ही तूने अपने हाथ से पूरा भी किया, जैसा कि आज है। इसलिए अब हे यहोवा इसराइल के परमेश्वर, इस वचन को पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। यदि तेरे वंशज अपने चाल चलन की चौकसी करें और जैसे तू मेरे सम्मुख चलता आया है वैसे ही वे भी मेरी विधियों पर चलें, तो तेरे कुल में इसराइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की कमी ना होगी। अतः अब हे यहोवा इसराइल के परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास दाऊद को दिया था उसे सच्चा सिद्ध कर। मित्रवर, हम यहां पर देख रहे हैं कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर के समक्ष घुटने टेके और अब अपनी प्रार्थना को आरंभ किया। उसकी प्रार्थना का प्रारंभ धन्यवाद के साथ हुआ। वह परमेश्वर को धन्यवाद देता है क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है। वह परमेश्वर की दया तथा विश्वास योग्यता के लिए उसे धन्यवाद देता है। आज अनेक मसीहों को इस अनुभव की अत्यंत आवश्यकता है। उन्हें परमेश्वर के समक्ष नम्र व दीन बनने की आवश्यकता है। मेरे मित्र, हमें परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध तथा घनिष्ठ सहभागिता रखने की आवश्यकता है। तब 18वें पद में हम पढ़ते हैं, सुलेमान कहता है, परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्य के साथ इस धरती पर वास करेगा? देख, मेरे बनाए हुए भवन में क्या तू तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मित्रवर, अब ये महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य पद है। यहां पर स्पष्ट है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए भवन में क्या रहेगा, वो तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता है। इसका तात्पर्य है कि वो भवन परमेश्वर और मनुष्य के मध्य एक मिलन स्थल होगा। वो परमेश्वर और मनुष्य के मध्य एक मिलने का स्थान बनाया जाएगा। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। वो स्थान परमेश्वर और मनुष्य के मिलने का स्थान होगा। तब 19 से 21 पदों में हम पढ़ते हैं जहां लिखा है, फिर भी हे यहोवा मेरे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गड़गड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और प्रार्थना को सुन जो तेरा दास तेरे सामने करता है, कि रात दिन तेरी आंखें इस भवन की ओर लगी रहें, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके लिए तूने कहा कि मेरा नाम वहां रहेगा, जिससे कि जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले और तू अपने दास और अपनी प्रजा इसराइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ाकर करें उसे सुनना, वरन अपने निवास स्थान स्वर्ग में से सुनना और सुनकर क्षमा करना। मित्र, और इस प्रकार ये मंदिर इसराइल जाति के जीवन का केंद्र बन गया। वहां जो भी प्रार्थना की जाएगी परमेश्वर उस पर ध्यान करेगा। दूसरे शब्दों में प्रत्येक इसराइल व्यक्ति उस स्थान पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और इस प्रकार से वो इसराइल जाति के जीवन का केंद्र बिंदु बन गया। 22 से 39 पदों में सुलेमान भिन्न भिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करता है। 32 और 33 पदों में हम देखते हैं जहां इस प्रकार से लिखा है, और वो परदेशी भी जो तेरी प्रजा इसराइल का ना हो, जब वह तेरे बड़े नाम और सामर्थ्य हाथ और तेरी बढ़ाई हुई भुजा के कारण सुदूर देश से आए और आकर इस भवन की ओर मुंह करके प्रार्थना करे, तब तू अपने निवास स्थान स्वर्ग में से सुनना और जिन बातों के लिए वह परदेशी तुझे पुकारे उन सब के अनुसार करना, जिससे समस्त पृथ्वी के लोग तेरा नाम जाने और तेरी प्रजा इसराइल के समान तेरा भय माने और ये भी जाने कि ये भवन जिसे मैंने बनाया है वह तेरे ही नाम का कहलाता है। अब इन पदों पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि ये मंदिर केवल इसराइल जाति के लिए ही नहीं वरन परदेशियों के लिए भी था, सारे संसार के लिए था। ये समस्त संसार के लिए प्रार्थना का भवन था। प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर से इस स्थान पर आकर भेंट कर सकता था। तब 36 से 39 पदों में भविष्यवाणी का वचन है। यहां लिखा है, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे, और वे उनको बंदी बनाकर दूर अथवा निकट के किसी देश में ले जाए, और यदि वे बंधुआई के देश में अपने आपे में आकर पश्चाताप करें और अपने बंधुआ करने वालों के देश में गिड़गिड़ाकर तुझसे विनती करें, हमने पाप किया है, अधर्म किया है और दुष्टता की है, यदि वे अपने उस बंधुआई के देश में जहां वे बंदी बनाकर ले जाए गए हों अपने संपूर्ण मन और अपने संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जिसे तूने अपने पूर्वजों को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम से बनाया है मुंह करके प्रार्थना करें, तो तू अपने निवास स्थान स्वर्ग में उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनकर उनके पक्ष में लड़ना और अपनी प्रजा के पाप जो उन्होंने तेरे विरुद्ध किए हैं क्षमा करना। प्रिय मित्र, ये भविष्यवाणी का वचन भी है और प्रार्थना भी है। दानियल नबी ने बेबीलोन की बंधुआई के समय ऐसा ही किया। उसने परमेश्वर के भवन की ओर अर्थात यरूशलेम की ओर अपनी खिड़की को खोलकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसी क्षण उसको उत्तर दिया। तब 40 से 42 पदों में लिखा है, अभी मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी ओर तेरी आंखें खुली रहें और तेरे कान लगे रहें, इसलिए अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर तू अपने सामर्थ्य के संदूक के साथ अपने विश्राम स्थल में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहें और जो कुछ भला है उसमें तेरे भक्त आनंदित रहें। हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त से मुख न फेर, तू अपने दास दाऊद पर की गई अपनी करुणा को स्मरण रख। प्रिय मित्र, ये एक महान प्रतापी प्रार्थना है, एक ऐश्वर्यपूर्ण प्रार्थना है। सुलेमान की प्रार्थना का आधार राजा दाऊद पर की गई करुणा है। वो कहता है कि मेरे परमेश्वर, तू अपने दास दाऊद पर की गई अपनी करुणा को स्मरण रख। मेरे मित्र, मैं और आप आज मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि तू अपने पुत्र प्रभु मसीह के कारण मुझ पर दया कर, मुझ पर करुणा कर, क्योंकि प्रभु मसीह ने अपना बहुमूल्य रक्त क्रूस पर बहाकर दयासन तैयार किया है। प्रभु मसीह के कारण परमेश्वर हम पर दया कर सकते हैं। उन्होंने अपने रक्त के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल कराया है। आज परमेश्वर पिता मनुष्य पर दया करने को तैयार हैं और स्वतंत्र हैं। तब 7वें अध्याय को हम आरंभ करेंगे। 7वें अध्याय का शीर्षक है, परमेश्वर द्वारा मंदिर को स्वीकार करना। पिछले अध्याय में हमने मंदिर के निर्माण के विषय में पढ़ा। हमने वहां राजा सुलेमान की प्रार्थना तथा संदेश का अध्ययन भी किया। इस अध्याय में हम परमेश्वर के प्रत्युत्तर के विषय में अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर पिता ने सुलेमान की प्रार्थना का किस रूप में उत्तर दिया। सो आइए देखें, 7वें अध्याय के प्रथम पद में लिखा है, जब सुलेमान प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग गिरी जिससे होम बलि तथा अन्य बलियां भस्म हो गईं और यहोवा का तेज भवन में भर गया। मित्र, ये वैसा ही अनुभव है जो निर्जन प्रदेश में उस समय हुआ था जब प्रभु के सेवक मूसा मिलाप वाले तंबू को तैयार कर चुके थे। इसका वर्णन हमें निर्गमन की पुस्तक के 40वें अध्याय के 34 और 35 पदों में मिलता है। उस समय भी इसी प्रकार से मिलाप वाला तंबू धुएं से भर गया, परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ने इस मंदिर को स्वीकार किया और परमेश्वर की स्वीकृति का प्रमाण स्वर्ग से आने वाली अग्नि तथा प्रभु का तेज था जिससे भवन भर गया। तब दूसरे और तीसरे पदों में लिखा है, और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके क्योंकि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भरा हुआ था। और जब आग गिरी और वह भवन यहोवा के तेज से भर गया तब उसे देखकर समस्त इसराइली भूमि की ओर मुंह किए हुए फर्श पर झुके और ये कहकर यहोवा की आराधना और स्तुति करने लगे, निश्चय वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रिय मित्र, इस अग्नि का क्या तात्पर्य है? इस अग्नि का अर्थ है कि पाप को परमेश्वर ने दंडित किया। दंड किसने सहा? होम बलि के पशु ने। प्रिय मित्र, परमेश्वर ने इस मंदिर को इसकी सुंदरता या प्रतिष्ठा के कारण स्वीकार नहीं किया। इसको स्वीकार किए जाने का आधार यह था कि यह मंदिर मसीह की ओर संकेत करता था और यह था मसीह का बलिदान जिसकी ओर यह संकेत था। यही बलिदान है जिसके कारण परमेश्वर इसे स्वीकार करता है। और जब भवन में परमेश्वर का तेज भर गया और लोगों ने प्रभु की स्तुति और आराधना की तो इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा हुई। मेरे मित्र, हमारे पास यहाँ एक महान संदेश है। यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह को होम बलि के पशु के रूप में देखते हैं जिसके कारण परमेश्वर ने इस मंदिर को स्वीकार किया। आज जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर पिता मुझे और आपको स्वीकार करते हैं। तब इसके पश्चात परमेश्वर ने सुलेमान को दूसरी बार दर्शन दिया। इसके विषय में हम पढ़ेंगे 12 से 16 पदों में। तब यहोवा ने रात में सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और इस स्थान को अपने लिए ठहराया है कि इस भवन में बलिदान चढ़ाए जाएं। यदि मैं आकाश को बंद कर दूं कि वर्षा ना हो, व टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, व अपने लोगों में महामारी भेजूं, और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। अब से इस देश में की जाने वाली प्रार्थना पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सर्वदा इसमें बना रहे और मेरी आंखें तथा मेरा मन दोनों निरंतर यहीं लगे रहें। मेरे मित्र, इस प्रकार परमेश्वर ने राजा सुलेमान की प्रार्थना का उत्तर दिया। ये उत्तर तर्कसंगत है। यहां दो स्थानों पर यदि शब्द का प्रयोग है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर इसराइल प्रजा को कुछ उत्तरदायित्व सौंपता है। यदि प्रजा अपना दायित्व पूर्ण करेगी तो परमेश्वर भी अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेगा, और यदि प्रजा अपने दायित्व को पूर्ण नहीं करेगी, परमेश्वर को तुच्छ जानेगी, तो परमेश्वर भी प्रजा को तुच्छ जानेगा। और प्रजा के पश्चात परमेश्वर राजा सुलेमान के समक्ष भी शर्त रखता है और क्या कहता है, यदि तू अर्थात सुलेमान अपने पिता दाऊद के समान मेरे सम्मुख चलता रहे और जो कुछ मैंने तुझे आज्ञा दी है उसके अनुसार किया करे और मेरी विधियों तथा मेरे नियमों को माना करे, तो मैं तेरे राज सिंहासन को सुदृढ़ करूंगा, जैसा कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे वंश में इसराइल की गद्दी पर विराजने वाला सदा बना रहेगा। मित्रवर, परमेश्वर ने दाऊद से यह प्रतिज्ञा की है कि तेरे वंश से इसराइल की गद्दी पर विराजने वाला सदा बना रहेगा। शरीर के भाव से हम इस पृथ्वी पर किसी को नहीं देखते, किंतु एक है जो दाऊद का वंशज होने का दावा कर सकता है, और ये वही है जो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है। उससे परमेश्वर ऐसा कहता है कि मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना बना दूं। ये कौन है? ये परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। तब 19 से 22 पदों में प्रभु परमेश्वर कहते हैं, परंतु यदि तुम फिर कर मेरी उन विधियों तथा आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी हैं त्याग दो और जाकर अन्य देवताओं की उपासना करो और उनको दंडवत करो, तो मैं तुमको अपने इस देश से जो मैंने तुमको दिया है समूल उखाड़ फेंकूंगा और इस भवन को, जिसे मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है, अपनी आंखों से दूर कर दूंगा और इस प्रकार सब जातियों में ये विनाश की उपमा और उदाहरण बनेगा। और ये भवन जो इतना विशाल है, इसके पास से होकर जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस समय चकित होकर पूछेगा, यहोवा ने इस देश तथा भवन के साथ ऐसा क्यों किया? और लोग उत्तर देंगे, उन्होंने तो अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उनको मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराए देवताओं को ग्रहण किया और उन्हें दंडवत करके उनकी उपासना की, इसलिए उसने उन पर ये सब विपत्तियां डाली हैं। प्रिय मित्र, इसराइली परमेश्वर की विधियों व आज्ञाओं का पालन ना कर सके, वे पराए देवताओं की उपासना में लिप्त हो गए, वे शर्त को पूर्ण ना कर सके और उसका परिणाम आज विश्व के सामने है। आज इस मंदिर के स्थान पर उमर का मस्जिद खड़ा हुआ है। प्रिय मित्र, इसराइल ने अपने जीवित परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया, सो परमेश्वर ने भी उन्हें त्याग दिया और परिणाम उनकी दुर्गति है। मित्र, आज भी परमेश्वर का यही ढंग है, यदि आप उसे तुच्छ समझेंगे तो वह आपको तुच्छ समझेगा। वह प्रेमी और दयालु अवश्य है, किंतु पाप से भयंकर घृणा करता है। वो किसी को भी उसके पापों के साथ स्वीकार नहीं करेगा। आपको परमेश्वर के समीप आने से पूर्व अपने पापों को पूर्णतः दूर करना है, किंतु ये कार्य कैसे संभव होगा? मित्रवर, ये कार्य आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ही संभव करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके छुटकारे तथा पापों की क्षमा का मूल्य क्रूस पर चुका दिया है। आप उनके द्वारा परमेश्वर के समीप आ सकते हैं। स्मरण रहे, परमेश्वर अपने वचन के पक्के हैं और उनका वचन अटल है। सो आज हम यहीं पर ठहरते हैं। अगले कार्यक्रम में 8वें अध्याय को लेकर पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करें। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है, तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।